पृष्ठ संख्या 40। मनोवैज्ञानिकता एक विशिष्ट संदर्भ है। मनोवैज्ञानिकता को प्रस्तुति शैली का एक प्रकार भी माना जा सकता है, विशेषता मुक्तिबोध की रचना के संदर्भ में। मुक्तिबोध ने फंतासी को कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण माना है। यह इसलिए ही हो सकता है कि मुक्तिबोध के लिए फंतासी एक अनिवार्य माध्यम थी। उन्होंने फंतासी के निरूपण में अवचेतन पर अधिक बल दिया है। वह उसके भीतर जीवन तथ्यों की उपस्थिति अवश्य मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि में फंतासी के अंतर्गत कभी कभी जीवन तथ्य अबोधगम्य हो जाते हैं। उनकी फंतासी विषयक अवधारणा अवचेतन मूलक है या अवचेतनाश्रयी। इस अर्थ में मुक्तिबोध के काव्य संसार का अध्ययन विश्लेषण शैली तथा विषय वस्तु दोनों दृष्टियों से मनोवैज्ञानिक आधार पर युक्त रूप में किया जा सकता है। अवचेतन स्वप्न और दिवा स्वप्न का सीधा संबंध मनोवैज्ञानिक से है। मुक्तिबोध ने इसका इस्तेमाल शैली के रूप में बराबर किया है। इसी के साथ हुए इसके अनुभवों की सामग्री को चेतन अनुभव की सामग्री के स्तर पर रखना चाहते रहे हैं। कठिनाई यहीं पैदा होती है। सच्चाई यह है कि मनोवैज्ञानिक अवचेतन कविता का उपकारक तत्व तो हो सकता है, उसका निर्मायक तत्व नहीं हो सकता। उपकारक तत्व के रूप में उसका प्रदेय प्रस्तुति के क्षेत्र में विशेष प्रभावकारी होता है, जैसा कि कामायनी में लज्जा सर्ग में देखने को मिलता है। मुक्तिबोध चूंकि अवचेतन के लोक में ही रमते रहे हैं, इसलिए इस दृश्य से उनके व्यक्तित्व के विश्लेषण की विशेष आवश्यकता है, जो साहित्य कर्म से जुड़े लोगों के लिए तो उपादेय होगी ही, उनके लिए और भी उपयोगी होगी जो मनोवैज्ञानिक प्रकरणों में रुचि रखते हैं। यह सर्वविदित है कि मुक्तिबोध असामान्य रुचियों वाले व्यक्ति थे। तिलक्ष्मी जासूसी उपन्यास पढ़ना, निर्जन जंगली स्थानों में अकेले घूमना, खंडहरों, बावड़ियों, परित्यक्त सीढ़ियोंदार मकानों के परिवेश में स्वयं को मौजूद पाने की तीव्र आकांक्षा रखना और कभी कभी पा भी जाना, ये सब जो उनकी कविताओं में है, उनके समग्र व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। वह अपनी कविता में अपना पूरा अवचेतन खोल देते हैं। एक काव्य छल के बहाने कि पता नहीं कि वह जागने की स्थिति में आ रहे हैं या कि स्वप्नावस्था चल रही है। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृत शुरू है। यह फंतासीय प्रस्तुति शैली है कामायनी में स्वप्न सर्ग की दिवा स्वप्नीय शैली जैसी, किंतु आगे इसी शैली के अंतर्गत प्रोसेशन तथा उससे जुड़ी बहुत सी यथार्थताएं कविता के केंद्रीय कथ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होती हैं। इसलिए अंधेरे में के संदर्भ में नए सिरे से विचार का एक अहम मुद्दा यह भी है कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन डिसिप्लिन को साहित्य के अंतर्गत किस सीमा तक कथ्य तथा प्रस्तुति दोनों के स्तर पर अनुमान्यता दी जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में उपस्थापित करती है। यह प्रश्न कविता से ही संबंधित नहीं है। साहित्य की प्रायः सभी अर्वाचीन विधाओं में मनोविज्ञान ने दखल दी है। अतः अंधेरे में के माध्यम से उठने वाले इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। निराला ने मनोवैज्ञानिकता के उपकारक तत्व के रूप में राम की शक्ति पूजा में अपनाया है। कारण भी स्पष्ट है। उनके पास एक पुराण अनुमोदित कथा आधार था, जिसमें वह अधिक हेर फेर नहीं कर सकते थे। और आमतौर से मुक्तिबोध से पहले किसी कवि ने स्वचेतन को काव्य आधार बनाया भी नहीं था। कतिपय स्फुट प्रयोग कर्मियों को छोड़कर तो निराला ने राम की शक्ति पूजा में मनोवैज्ञानिकता का आधार अवश्य ग्रहण किया है, किंतु वह प्रस्तुति पक्ष से संबंधित है। मनोविज्ञान का संबंध मूलतः भावों से है। राम की शक्ति पूजा में प्रसंगोचित भावात्मक आरोह अवरोह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विभीषण की यह आशंसा एवं धिक्कार की युक्ति उल्लेखनीय है। राम हताश हैं, हनुमान भी अंतरिक्ष से दीन होकर लौट चुके हैं। मनोवैज्ञानिक युक्ति के रूप में किसी को प्रोत्साहित करने के लिए पहले उसे उसकी साधन संपन्नता का स्मरण कराया जाना चाहिए। विभीषण वही करते हैं। रघुबीर तीर सब वही तूड़ में हैं रक्षित, है वही क्षण रणकुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर आ प्रतिभट, वही एक अर्बुद सम महावीर। पृष्ठ संख्या 42। विभीषण राम के मित्र के स्तर के हैं, अतः वह इसके अनंतर क्रमिक आघात की पद्धति अपनाते हैं। पहले वह रघुवंश की मान और क्षत्रियत्व के मान की बात करते हैं। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाना डूब मरने जैसा था। तुलसी ने भी क्षत्रियत्व की परिपाटी उद्धृत की थी। जिनके लहाई नृप रण पीठी, जिनके शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देख पाते। उसके बाद वे यह याद दिलाते हुए कि उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतने लोगों द्वारा किया श्रम व्यर्थ होने जा रहा है, जबकि सीता से मिलने का समय निकट आ चुका है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। सीता के संदर्भ में रावण की लंपटता, आचरण भ्रष्टता तथा विवेकहीनता का उल्लेख करने के उपरांत विभीषण अपने विषय में राम के द्वारा दिए गए वचन, विभीषण को लंका का राज मिलना को लेकर जो व्यंग्यात्मक उलाहना देता है, वह निराला की मनोवैज्ञानिक पैठ का अनूठा उदाहरण है। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देखा दुख सीता को घिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से फिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, मैं बना किंतु लंका धिप धिक रावण धिक धिक। विभीषण की अंतिम व्यंग्योक्ति तथा उनका धिक्कारना किसी भी क्षत्रियो को उकसाने के लिए अपेक्षा अधिक था, जबकि राम तो सूर्यवंशी थे, जिनके रघुकुल में यह रीति सदा से चलती आ रही थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आशंसा और धिक्कार की यह मनोवैज्ञानिक युक्ति कथा संदर्भ में भले ही सार्थक सिद्ध ना हुई हो, किंतु वह कवि की मनोवैज्ञानिक पैठ का परिचय निश्चय ही देने वाली है। विभीषण के इस मनोपचारक प्रयत्न की सार्थकता इस दृष्टि से आंकी जानी चाहिए कि इससे कथा को गति मिलती है और राम के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद वास्तविक विकल्प के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। राम की शक्ति पूजा में मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टि से एक और स्थल उल्लेखनीय है। भारतीय काव्य शास्त्र में इसे ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। किसी भाव के उदित तथा प्रशमित होने का चित्रण भी रसात्मक कोटि में आता है, भले ही उसे गुणीभूत व्यंग्य के खाते में डाल दिया गया हो। मेरा कहना यह है कि भावोदय और भाव शांति की स्थितियाँ किसी रचना में एक प्रसंग क्रम में प्रभावकारी रूप में मिलती हैं, जो वह रचनाकार की मनोवैज्ञानिक पैठ का प्रमाण पत्र होगा। राम की शक्ति पूजा में निराला की यह क्षमता देखने के काबिल है। हनुमान राम के चरणों में बैठे हैं, राम के अश्रु कण ढुलक कर उनके चरणों पर आ गिरते हैं। हनुमान को पहले यह विश्वास नहीं होता कि राम के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, किंतु यथार्थ स्थिति समझते ही उनमें जैसा रौद्र भावोदय होता है, वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं देखने को मिले। प्रलय का चित्र प्रसाद ने भी कामायनी में प्रस्तुत किया है, किंतु निराला अपने पृष्ठ संख्या 43 इस चित्रण में उनसे कहीं आगे हैं, बल्कि अप्रतिम। रौद्र रस के अस्थायी भाव रोष या क्रोध का संदर्भ होने के कारण निराला को थोड़ी प्रसंगगत सुविधा अवश्य मिल गई है, किंतु चित्रण शक्ति तो अपनी जगह है। कुछ पंक्तियां ले सकते हैं। ये अस्त्र राम के आते ही मन में विचार, उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो शोषित पवन उनचास पिता पचके तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत धूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिफल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज धन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। भावोदय के इस चित्र की जीवंतता का एक प्रमुख कारण यह है कि रोषोन्मेष के साथ हनुमान का ऊर्ध्वागमन आरंभ हो जाता है। किसी प्रकार के काउंट डाउन रॉकेट प्रक्षेपण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भावोन्मेष निरंतर तीव्रतर होता हुआ तब तक बना रहता है जब तक हनुमान शक्ति के लोक में पहुंचकर उसे अवरोध में नहीं ले लेते और उससे भी आगे बढ़कर समूचे आकाश को ग्रस लेने के अटल संकल्प के साथ अग्रसर नहीं होते। इसी के बाद शिव के परामर्श से शक्ति उनकी माता अंजना के रूप में प्रकट होकर उन्हें प्रबोधित प्रताड़ित करती हैं और भाव शांति की स्थिति आ जाती है। यह स्थिति भी बड़े ही मनोवैज्ञानिक कौशल के साथ प्रस्तुत की गई है। भावोदय की स्थिति में मनोवैज्ञानिक पहलू यह था कि हनुमान राम के अनन्य भक्त तथा सेवक थे। वे उन्हें सर्वशक्तिमान तथा पराजेय मानते थे। राम के आंसू देखकर भी पहले उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से सत्य को नकारने की कोशिश की। अंततः यथार्थ की पुष्टि ने उन्हें एक बारगी रोषविष्ट कर दिया। भाव शांति की भी मनोवैज्ञानिक तर्क प्रणाली दृष्टव्य है। पहले माँ उन्हें उनके बचपन की उदंडताओं की याद दिलाती हैं, जिनके कारण उन्हें बार बार उल्हाने सहने पड़े थे। फिर वह महाकाश में रहने वाले शिव की बात कहती हैं, जिनकी पूजा स्वयं हनुमान के स्वामी राम ने की थी। अंतिम आघात यह कि हनुमान राम के सेवक हैं। बिना राम की आज्ञा के वह यह जो असंभाव्य कृत्य महाकाश का ग्रसन करने जा रहे हैं, क्या राम उनके इस मन मानेपन को सहन कर सकेंगे? बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूंजते जिन्हें श्री राम उन्हें ग्रसने को चल। पृष्ठ संख्या 44। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, यह असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। परिणामतः हनुमान दयनीय स्थिति में पुनः राम के चरणों में आ पड़ते हैं। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। भर्त्सना क्षमा दोष दर्शन धिक्कार तथा तीव्र दोषारोपण की प्रक्रिया द्वारा भाव शांति की यह स्थिति निर्मित की गई है। भावोदय और भाव शांति की स्थितियों के चित्रण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं, क्योंकि दोनों के वक्ता श्रोता या आश्रय आलंबन भिन्न प्रकृति के हैं। विभीषण राम के मित्र अस्त्रिय हैं, अंजना हनुमान की माँ हैं। राम पुरुषोत्तम हैं, हनुमान उनके सेवक भक्त हैं। इस भिन्न संबंधात्मकता के नाते दोनों स्थितियों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जो विभेद निराला ने प्रेरेखित किया है, वह उनकी एतद्विषयक क्षमता का परिचायक है।